भैया, मुझे भी भाभी से मिलना है। माधव अकेला बैठा जाने क्या ही सोच रहा था, जब शिखा भी आकर उसके पास बैठ गई। अचानक आई उसकी आवाज़ से ज्यादा माधव उसकी बात से चौंक गया। भाभी, राधिका भाभी, शिखा ने जैसे उसकी उलझन दूर की थी और इसके साथ ही माधव के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। शिखा हैं, मुझे तो वो पहले से ही बहुत पसंद थी और अब तो और ज्यादा पसंद आ गई हैं। अब मुझे भाभी के रूप में वही चाहिए। आप बताइए, मुझे भाभी लाकर देंगे या नहीं? मैडम छोटी थी पर अपने बड़े भाई पर दादागिरी दिखा रही थी, हुक्म चला रही थी। माधव तो हैरान परेशान सा उसे देखता ही रह गया। तुम तो ऐसे कैसे कह रही हो जैसे भाभी नहीं कोई चीज़ लाने को कह रही हो, जिसे दुकान से खरीद कर मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस राधिका भाभी को मेरी भाभी बनाकर ला दो। बच्चों जैसी जिद पर अड़ी थी वो और फरमाइश झाड़ रही थी, जिसने माधव की परेशानी बढ़ा दी थी। मुश्किल है शिखा, इतने वक्त में बहुत कुछ बदल गया है। पर आप दोनों के जज्बात तो नहीं बदले ना? आप दोनों आज भी एक दूसरे को चाहते हैं, फिर परेशानी क्या है? क्या सुमन भाभी की वजह से आप शादी से दूर भाग रहे हैं? माथे पर सिलवटे डाले शिखा ने परेशान निगाहों से उसे देखा। माधव कुछ पल परेशान सा उसे देखता रहा, फिर मायूसी भरे स्वर में बोला, नहीं, परेशानी सुमन नहीं राधिका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी से भी दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी भी। पूरी बात तो नहीं जानता पर उनकी पहली शादी से बहुत गहरे जख्म मिले हैं उन्हें, जो आज भी हरे हैं, और उसका दर्द उनकी आंखों में देखा है मैंने। तो क्या आप ऐसे ही उन्हें जिंदगी भर दर्द में तड़पने के लिए अकेला छोड़ देंगे? शिखा ने हैरानगी से आंखों की पुतलियां फैलाकर उसे देखा। नहीं, उनका दर्द कम कर सकूं, उन्हें अतीत की उन तकलीफदेह यादों से बाहर निकाल सकूं, वापस जिंदगी की ओर ला सकूं, इसीलिए तो दोस्ती की है उनसे। पर अभी तो बस शुरुआत हुई है, एक लंबा सफर तय करना है अभी मुझे। नहीं, अब बस थोड़ा ही सफर बचा है। उनकी दोस्ती पाकर आप उनके दिल तक पहुंच गए हैं, अब बस आपको उनके दिल पर लगे जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगाना है, उन्हें हर दर्द से आज़ाद करना है, उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास करवाना है, फिर वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि इसी प्यार की ज़रूरत और ख्वाहिश है उन्हें, जो आप उन्हें दे सकते हैं। अपनी छोटी बहन के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर माधव बस उसे देखता ही रह गया। शिखा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। भैया, अप्पू से मुझे कुछ बातें पता चली हैं। भाभी ने अब तक अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा है, बहुत बुरा दौर देखा है। उनके जगह अगर कोई और होता तो शायद मर ही गया होता, पर वो लड़ती रहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए। जितनी ज़रूरत आपको उनकी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरत उन्हें आपकी है, इसीलिए वो आपसे दूर भी जाना चाहें तब भी उन्हें खुद से दूर मत जाने दीजिएगा। उन्हें वो प्यार दीजिएगा जिसकी वो हकदार हैं, पर वो प्यार उन्हें कभी मिला ही नहीं। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें हर दर्द से आज़ाद करके उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दीजिए। वो कहती नहीं पर बहुत तन्हा और अकेली हैं वो। शिखा की बातों ने माधव को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ अप्पू के आने पर राधिका की सोच पर विराम लगा। इस वक्त उसे अपने कमरे में आते देखकर राधिका चौंक गई। अप्पू, तुम अब तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं और इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं आपके पास चली आई, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? अप्पू ने क्यूट सी शक्ल बनाकर अपनी पलकें झपकाई। राधिका पल भर को कुछ परेशान सी हो गई, फिर उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और अप्पू दौड़ती हुई आकर उसके बेड पर पसर गई। राधिका उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और खुद भी सोने को लेट गई। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि पिलो पर कोहनी टिकाए अर्पिता राधिका की ओर चेहरा करते हुए तिरछी होकर लेट गई। दीदी, आपको माधव जी कैसे लगते हैं? राधिका, जिसके दिलो दिमाग पर माधव का ख्याल ही घूम रहा था, अर्पिता द्वारा माधव के लिए सवाल किए जाने पर हड़बड़ाते हुए वो होश में आई और हैरानगी से बोली, अचानक तुम मुझसे ये सवाल क्यों करने लगी? मुझे नींद नहीं आ रही ना, इसीलिए बातें कर रही हूँ। अब बताओ ना, माधव जी कैसे लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं का क्या मतलब हुआ? जैसे हैं वैसे ही लगते हैं, राधिका ने सक पकाते हुए जवाब दिया। पर अर्पिता ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने फिर सवाल पूछ लिया, अच्छा तो चलो यही बता दो कि कैसे हैं वो? मुझे नहीं पता, राधिका ने खींचते हुए कहा और अपना पल्ला झाड़ते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। लेकिन अप्पू आज उसे तंग करने के पूरे मूड में थी, उसका बोलना फिर शुरू हो गया। यार दी, मुझे तो माधव जी बड़े अच्छे लगते हैं, कितने स्मार्ट दिखते हैं, क्या कमाल की पर्सनालिटी है उनकी, बॉडी सॉडी भी बनाई हुई है, पहले से तो कितने ज्यादा हैंडसम हो गए हैं और जब मुस्कुराते हैं तो कितने क्यूट से लगते हैं, नेचर से भी कितने स्वीट से हैं, कोई घमंड नहीं। शिखा बता रही थी कि कोई बुरी आदत भी नहीं उनमें, ना कभी शराब हाथ लगाई, ना सिगरेट तंबाकू कुछ हुआ, खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं और खाना तो इतना जबरदस्त बनाते हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। वो औरतें क्या कहती हैं? हाँ याद आया, हीरा हैं, बिल्कुल हीरा, जिसमें कोई ऐब नहीं। जिस भी लड़की की उनसे शादी होगी ना, उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। पता नहीं कैसी बेवकूफ़ और बदनसीब लड़की होगी वो, जिसने उनकी कदर नहीं की, वरना ऐसा ऑल इन वन कॉम्बो पैक वाला पति कहीं आसानी से मिलता है? मैं होती ना तो कभी उन्हें छोड़ती ही नहीं, पर शायद माधव जी की किस्मत में कोई बेहतर ही लाइफ पार्टनर लिखी होगी।
वैसे दी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता ना अगर आपकी माधव जी से शादी हो गई होती और वो मेरे जीजू होते। मैं तो सबको बताती कि मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं और कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। अर्पिता खुद में ही बोले जा रही थी और खुशी से चहक रही थी। वो तो शायद अभी आगे भी कुछ कहती पर इससे ज्यादा राधिका सुन ना सकी और हल्के गुस्से के साथ उसने अर्पिता को डांट दिया। बस कर अप्पू, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, नींद आ रही है मुझे, तो सोने दो मुझे और खुद भी सो जाओ वरना सुबह उठने में नखरे करोगी। दीदी आप नाराज हो गई, कहीं आपकी और माधव जी के बीच लड़ाई तो नहीं हो गई, इसीलिए आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहती? मेरी उनसे लड़ाई क्यों होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपना दिमाग फिजूल बातों पर चलाना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अगर अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी तो उठाकर सीधे कमरे से बाहर कर दूंगी, राधिका ने उसे डांटते हुए सख्ती से धमकी दी, जिसे सुनकर अर्पिता ने बुरा सा मुंह बनाया और चुप करके सीधी लेट गई। अर्पिता तो कुछ ही देर में सो गई पर राधिका सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। माधव का ख्याल था कि जहन से उतर ही नहीं रहा था। देखते देखते कुछ दिन और बीत गए थे, न माधव ने राधिका को फोन किया और न ही राधिका उसे फोन करने की हिम्मत जुटा सकी। जाने उसके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता था कि खुद में ही उलझी और परेशान सी रहने लगी थी वो। अप्पू कॉलेज टूर पर गई थी, 4 दिन के लिए गई थी और आज वापस लौटने वाली थी। घर पर आशुतोष जी अकेले थे। राधिका को स्कूल में काम की वजह से रुकना पड़ा तो उसने आशुतोष जी को फोन कर दिया, वरना वो बेवजह ही परेशान हो जाते। एक बार, दो बार, तीन बार राधिका उन्हें फोन करती रही पर उन्होंने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की, जिससे वो डर गई। अब कुछ गलत होने का ख्याल से उसका मन घबराने लगा। वो घर पर अकेले थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सोचकर ही राधिका को टेंशन होने लगी।
राधिका ने 2-3 बार और फोन मिलाया, पेशेंस के साथ उनके कॉल उठाने का इंतजार भी किया, खुद को लगातार समझाती भी रही, पर अब उसका दिल घबराने लगा था। हारकर उसने अब माधव को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ माधव, जो किचन में खड़ा कुछ बना रहा था, स्क्रीन पर राधिका का नाम देखकर उसे खुशगवार सी हैरानी हुई और वो तुरंत ही फोन लेकर बाहर निकल आया। हेलो राधिका, माधव जी एक फेवर करेंगे मुझे? राधिका की व्याकुलता भरी आवाज़ सुनकर माधव के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। क्या हुआ राधिका, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैं कब से पापा को फ़ोन कर रही हूँ पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, घर में उनके साथ और कोई है भी नहीं, मैं अभी घर नहीं जा सकती, क्या आप घर जाकर एक बार पापा को देख लेंगे कि वो ठीक तो है? प्लीज़ इतनी हेल्प कर दीजिए मेरी। मैं अभी निकलता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अंकल ठीक होंगे, माधव ने उसे दिलासा दिया। राधिका के मन में कुछ सुकून सा उतरा पर चिंता अब भी हो रही थी उसे उनकी। माधव के रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर था राधिका का घर, इसलिए उसको कुछ वक्त लग गया। उसने कई बार डोरबेल बजाई पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके दिमाग में भी कुछ खटका और अब वो अंदर घुसने का कोई और रास्ता ढूंढने लगा। जल्दी ही घर से आसपास घूमते हुए उसकी नज़र एक खिड़की पर गई। ये किचन की खिड़की थी जो बाहर खुलती थी और शायद आज राधिका जल्दबाजी में उसे बंद करके जाना भूल गई थी। खुली खिड़की को देखकर जहां माधव के चेहरे पर राहत के भाव उभरे, वहीं हल्की नाराज़गी भी छलकी। किचन की खिड़की से कूदकर घर में घुसा, कुछ आगे बढ़ा तो उसे आशुतोष जी नज़र आए। सीढ़ियों के पास बेहोश पड़े थे वो और सर से खून बह रहा था। टू बी कंटिन्यूड, क्या होगा अब आगे?